ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। बाप सुख शांति देने आए हैं, पर सुख शांति उन्हीं को मिलेगी जो श्रीमत पर चलेंगे। अगर तुम श्रीमत पर नहीं चले तो सुख शांति कहाँ से मिले, कौन दे तुम्हें? सुख शांति देने वाला तो बाप है। तुम अपने आप को सुख शांति दे सकते हो क्या? और अगर नहीं दे सकते तो बाप की बात क्यों नहीं मानते, श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? बच्चे, समझ की बात है ना? तुम चिंतन करो अपने से, क्या हम श्रीमत पर चलते हैं? चाहते सुख है, चाहते शांति है, पर श्रीमत पर नहीं चलना है। करना अपने हिसाब से ही है, पर चाहना शांति है, चाहना सुख है। तुम्हारे पास इतना ज्ञान है कि तुम अपने आप को सुख शांति दे सको। तुम्हारे पास इतनी समझ है कि तुम अपने आप को सुख शांति दे सको। और अगर नहीं है तो बाप की बात क्यों नहीं मानते, समस्या क्या है? ना बाप की बात माननी है, ना बात को समझना है, बस अपनी बात लड़ानी है। अपनी बात को लड़ाने वाले सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे कभी नहीं। तुम में बहुत अहंकार है बच्चे, इसलिए तुम बाप की बात मानने के लिए राजी नहीं हो। अनेक जन्म तुमने वही किया, संसार बटोरा, और अभी भी क्या कर रहा? वही कर रहे हो। इससे क्या होगा? हाथ में आएगा कटोरा, प्रजा में चले जाओगे। अभी भी मौका मिला है, और अभी अभी मौका मिला है कि छूट जाए चक्र से, पर नहीं, अपनी ही बात करनी है, अपने ही हिसाब से चलना है, बाप की माननी ही नहीं है, अपनी आशाएं इच्छाएं पूरी करनी है। करो बच्चे, करो, अच्छे से करो। बच्चे, संगम में आकर तुम्हारी अगर कोई इच्छाएं आशाएं बची है तो तुम्हारी गति क्या है पता है? दुर्गति। भटकोगे शरीर छोड़ने के बाद। मैं अभी तुम्हें लिख के देता हूं, तुम इस चक्र से नहीं छूट पाओगे, क्योंकि संसार करना है। इस चक्र से छूटकर सतयुग में, परम धाम में, बना बिना मार खाए धर्मराज का वही जाएंगे जो संसार से छूटेंगे। बच्चे, छूटा है संसार, बड़ी सुख की आशा है, बड़ी शांति की आशा है, पर तुम हो कहाँ? दुख में, अशांति में, संसार में, और आशा करते हो सुख और शांति की। अजीब बात है बच्चे, चाहना कुछ और है, मांगते कुछ और हो, मेडिकल में जाके किराने का सामान मांग रहे हो, किराने की दुकान में जाके सब्जी मांग रहे हो, सब्जी की दुकान में जाके दवाई मांग रहे हो, यह है तुम्हारी रीति। अच्छे होश में आओ, समझ है, चिंतन करो अपने से, श्रीमत पर चलते हो क्या? चिंतन करो, बाप मिला ना, अब काहे का संसार, किस बात का संसार, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा? समझ है बच्चे, ऐसे बच्चे बाप को भी पसंद नहीं, जो परमात्मा मिलने के बावजूद संसार के पीछे दौड़ते हैं, घर बार के पीछे दौड़ते हैं, मायावी सुखों के पीछे दौड़ते हैं, नहीं चाहिए बाप को। ऐसे बच्चों का चेहरा भी देखना बाप पसंद नहीं करता। धरती पर बोझ है ये, अपने स्वार्थ के लिए धरती पर उपस्थित है, अपनी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए धरती पर जिंदा है, ये बोझ है धरा पर पूरा पूरा। ऐसे बच्चों का कोई उपयोग नहीं है, समझ है बच्चे, चिंतन करो। सुख शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको, आत्मिक स्थिति में आओ। तुम आत्मा हो बच्चे, इस स्वधर्म में आओ, तब फिर आगे बात होगी। स्वधर्म में नहीं टिकते और फिर बच्चे विचार करो, तुम जिस अवस्था में आना है उसमें नहीं आते, और देखो मांग कितनी बड़ी है, सुख और शांति चाहिए, पॉसिबल है? सुख और शांति जिसे चाहिए पहले वो उपस्थित हो जाए, आत्मा, अपने स्वधर्म में आओ, ऑर्गन से डिटैच हो जाओ, फिर देखो बच्चे आनंद ही आनंद है, करके तो देखो, सुख शांति मिलेगी। चिंतन करना। प्रश्न है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है, तुम्हारी पूजा क्यों होती है? उत्तर है, पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती है, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। बच्चे तुम मददगार बने हो, सर्वस्व स्वाहा किया है, तन मन धन सब स्वाहा किया है, परिवार शक्ति किया है क्या? बाप के मददगार वही जिन्होंने सर्वस्व स्वाहा किया है। ऐसे ही बच्चे वर्षे के हकदार हैं। क्यों बच्चे? संगम पर बाप को ये बच्चे सब देते, इसलिए कल्प में बाप इन्हें सब देता है। तुम देते नहीं हो, तुम पुरुषार्थ भी कर रहे हो लेने के लिए, ऊंच पद, मुरली भी सुन रहे हो ऊंच पद लेने के लिए, योग भी कर रहे हो ऊंच पद लेने के लिए। है कोई इस सृष्टि में आत्मा जो कहे मेरा सारा ज्ञान योग बाबा को अर्पण करते हैं, तन मन धन अर्पण करते हैं? है कोई? विश्व सेवा अर्थ सब अर्पण करते हैं, है कोई? मुश्किल कोई निकलता है। समझ है बच्चे, मैं क्या आसमान से पैसे लेकर आया हूँ या तुम्हारे लिए यज्ञ खड़ा करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए? तुम्हारा ही धन तुम्हारे कार्य में लगता है, इस विश्व के कार्य में लगता है। समझ है, तुम क्या मदद करते हो बाप को, किस प्रकार से तन लगाते हो समर्पण करके कर्मणा सेवा में, वाचा सेवा में, मन लगाते हो मनसा सेवा में, पुरुषार्थ में, याद में, और धन लगाते हो यज्ञ को बढ़ाने में? क्या मदद करते हो तुम बच्चे, चिंतन करो। समझ की बात है, इस सृष्टि में से मुश्किल कोई निकलेगा जिसे बाप कहे सब खाली करो और वो खाली हो जाएगा, मुश्किल कोई निकलेगा तत्क्षण, एक मिली सेकेंड की भी देरी नहीं, तत्क्षण पूरा खाली, ज्ञान योग भी खाली। इस बात पर बच्चे बात नहीं करेंगे। क्यों बच्चे पता है? क्योंकि तुम मांगने वाले हो, लेने वाले हो, तुम देवता नहीं, तुम लेवता हो, ऐसी तुम्हारी अवस्था है। समझ है, मैं भी बाप हूं, मुझे वारिस नहीं बनाया तो मैं तुम्हें क्यों वारिस बनाऊं? नहीं बनाऊंगा, कितना भी ज्ञान योग धारण करो, मुझे वारिस बनाया है नहीं ना, तो तुम्हें भी मैं वारिस नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सब लुटा रहा हूं ना, तो तुम्हारा क्या? बात खत्म। सब बाबा कहते मैंने ही दिया है, मैंने ही दिया है, मेरा मुझे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ है, ज्ञान भी तो मैंने दिया है, जो ज्ञान तुम सीखे मेरे यज्ञ की सेवा में, विश्व सेवा में तुमने लगाया, वाचा सेवा में, तो कोई बड़ी बात नहीं। योग भी तो मैंने सिखाया है, जो योग तुम सीखे वो तुमने दूसरों को सिखाया और या उससे मनसा सेवा की, वाइब्रेशंस फैलाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरी ही देन है। धारणा भी तो मैंने ही कराई है, मेरी धारणा मेरे कार्य में लगाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेवा भी तो मैंने दी है, तुम्हारी कहाँ से सेवा है, पर सेवा भी तो मेरी है, तन भी मेरा है जो मैंने तुम्हें दिया है, मन भी मेरा है, धन भी मेरा है, तो सब मेरा, मेरे कार्य में लगा तो क्या बड़ी बात है, उल्टा ना लगा तो बोझ चढ़ेगा, लगा तो कुछ मिलेगा, इस आशा में नहीं रहना मेरा ही है सब, वो मेरी मर्जी, दूंगा या नहीं दूंगा मेरा ही है, नहीं लगाया तो तुम चोर ठहरे हैं, मेरा लेकर मुझे वापस नहीं दिया, सीधी बात कहता हूं मैं। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें कहोगे, ज्ञान योग धारणा सेवा तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब शिव बाबा की देन है, तो वापस करो। अभी वापस क्यों नहीं करते, मेरी देन मुझे क्यों नहीं देते? समझ है बच्चे, डर किस बात का, जिसका उसको देने में डर किस बात का, इसका अर्थ क्या है? अगर देने में कतराते हो तो खोट है मन में, पाप है मन में। बच्चे ध्यान में रखना, ध्यान से चेक करो अपने आप को, ध्यान से चेक करो। तुम समर्पित हुए तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, मेरे ही हो तुम, कोई उपकार नहीं किया मुझ पर समर्पित होकर, मेरी मर्जी, फल दूंगा या नहीं दूंगा, मेरे ही चीज को मैं क्या फल दूं। समझ की बात है बच्चे। मददगार कौन? जो सर्वस्व स्वाहा करते हैं, पीछे रखने वाले मददगार नहीं है मेरे। पीछे ध्यान में रखना, सर्वस्व स्वाहा करने वाले ही मददगार हैं। पीछे रखने वाले सोच रहे हम अपनी मदद करेंगे, कोशिश करेंगे, ज्ञान योग की जमा पूंजी जमा करेंगे और ऊंच पद पाएंगे। तुझे लगता है बच्चे तू पाएगा? संभल कर रहना और संभाल कर रखना। इसलिए यज्ञ में कोई समर्पित हुआ तो कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है। बाप का तन बाप के पास पहुंचा, बाप की आत्मा बाप के पास पहुंची। किसी ने करोड़ों रुपए यज्ञ में लगाए कोई बड़ी बात नहीं है। बाप का ही धन बाप के पास पहुंचा, कोई उसकी वाह वाह करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका उसके पास पहुंच गया, उल्टा उसको शुक्रिया करना चाहिए कि अच्छा हुआ सही समय पर हर चीज बाप की बाप के पास पहुंची। समझ है बच्चे? चिंतन करो, दुनिया भी अज्ञानी जिन्हें ज्ञान नहीं और तुम ज्ञानी अज्ञानी कोई अंतर नहीं। दुनियावी अज्ञानी भी मंदिर में जाके कहेंगे सब आपकी देन, और वो गणेश जी हनुमान जी प्रकट हो के कहे वापिस करो, करेंगे नहीं? फिर कहेंगे परिवार के लिए चाहिए, खुद की व्यवस्था के लिए चाहिए। हम अगर समर्पित हो गए तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा नौकरी धंधा घर बार? यही तो बात है बच्चे। तुम बस नाटक करते हो ईश्वर के साथ, बस नाटक। समझ की बात है बच्चे, कम से कम ईश्वर के साथ नाटक नहीं करो। झूठ तो मत बोलो, तुम कंफर्म करो तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा है या शिव बाबा का है। कंफर्म करो, एक पक्का बोलो, या तो तुम्हारा या शिव बाबा का, दोनों में से एक। और अगर तुम कहोगे शिव बाबा का है तो लौटाते क्यों नहीं? किस बात पर रुके हो? और अगर तुम्हारा है तो क्यों कहते हो कि भगवान का दिया है सब, शिव बाप का दिया है सब? कहो ना मेरा है, मैंने कमाया है मेरी हिम्मत से, दम है तो कह के दिखाओ। क्यों नहीं कह सकते? ड्यूअलिटी में मत चलो बच्चे, ध्यान दो इस बात पर। जीव भी उसी का है और आत्मा भी उसी की है, ध्यान में रखना। मूर्ख लोगों को समझ में नहीं आएगा, मूर्ख लोग यही समझेंगे आत्मा तो मैं हूँ और जीव तो मेरा है, ये मैं और मेरा इनका कभी छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा, मूर्ख है ना वो। बच्चे तुम कौन हो चेक करो, ध्यान से चेक करो। समझ की बातें। मुश्किल कोई निकलता है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलता है जो इस प्रकार बनता है। हर किसी का भाग्य नहीं है। और कोई बच्चे अभी सोचते होंगे हाँ बाबा हम बनेंगे, बनेंगे का यह टॉपिक ही नहीं, विषय ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। बनेंगे भविष्य में, कल जिंदा रह सकते हो गारंटी है, संकल्प नहीं हर रूप से कटकर। बनना है तो आज अभी इसी घड़ी, बनेंगे की बात ही नहीं आती, कभी नहीं आती। समझ है? इसलिए बच्चे हमेशा ध्यान में रखना, यज्ञ में किसी ने कितनी भी बड़ी सेवा की, ताज्जुब नहीं करना। मेरा मुझे लौटाया है भगवान ने, बनाया हुआ फूल फल भगवान के मंदिर में गया, क्या बड़ी बात हुई। उसी का फूल है बनाया हुआ, इंसान में दम है तो फूल फल बना के दिखाए, दम है तो तू खरीद सकता है, बना नहीं सकता। बनाया मैंने ही है, ध्यान में रखना, बनाने वाला मैं ही हूँ, ध्यान में रखना। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे, सेवा में मददगार बनो, पूरे 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 मददगार। समझ की बात है, चिंतन करना अपने से। आपको मजा पता है इस संसार का, जो गरीब है ना, गरीब वो अपने आप को समर्पित करने की चेष्टा कर रहा है। जो गरीब है और जो अमीर है ना, वो धन को समर्पित करने की चेष्टा कर रहा है। उसे नहीं आना है, उसे समर्पित नहीं होना है। पर न गरीब न अमीर तन मन धन से समर्पित होना चाहता है, न गरीब न अमीर, दोनों ने अपने रास्ते निकाल के रखे। ऐसी बात है, चिंतन करो अपने से। बच्चे बाप टोले में भी यही कहता है, बन सकते हो तो बाप के बनो, बहुत थोड़ा टाइम है, चिंता नहीं करना। काल हर किसी के ऊपर आ रहा है, तुम्हारा भी नंबर लगा हुआ है, तुम्हारा भी, कब तुम्हें उठाएगा गारंटी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम बाबा के बच्चे हो तो क्या अमरता का सर्टिफिकेट लेके आए हो? बाबा के बच्चे हो तो दुनिया में इतनी आपदाएं आ रही, अलग अलग जगहों पर, वहां मेरे बच्चों के ऊपर आपदा नहीं आती होगी? कोई ना कोई बच्चा तो होगा ही ना उस इलाके में जिस पर थोड़ी बहुत आपदा आई होगी। कोई कोई तो शरीर भी छोड़े होंगे। अब रेगुलर सेंटर जाने वाले कौन जानता है, कभी जाने वाले कभी ना जाने वाले, कभी गीता पाठशाला में जाने वाले कौन जानता है, कौन पहचानता है? आपदा सब पर आनी है, कोई छूट नहीं सकता बच्चे इस आपदा से। इसलिए ध्यान में रखना, आपदा आने से पहले अपने आप को आपदा, अपने आप को बाप दादा का बना लो, बनवा लो, वरना जिंदगी भर रहोगे दुनिया के ही जन्मे और दुनिया के ही मरे। हमने कहा ना एक मुरली में, एक दिन के लिए ही सही मरने से पहले, पर बाप का बनकर जरूर मरना, दुनिया का रहकर नहीं मरना। बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, कहते हमारा तन ठीक नहीं, मन ठीक नहीं, धन ठीक नहीं, परिवार ठीक नहीं, ये सब ठीक होगा ना तो हम समर्पित होंगे। तू कभी नहीं समर्पित होगा, क्योंकि ये बिगड़ने वाला है, ये कभी ठीक नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ तुझे, कलयुग समाप्ति की ओर जा रहा है और तू ठीक करने की ओर जा रहा है, पॉसिबल नहीं है, ये कभी नहीं ठीक हो सकता। लोग तो जिंदा समाधि लेते हैं, तुम्हें तो समर्पित ही होना है, समाधि कब लोगे फिर? है हिम्मत जिंदा समाधि लेने की? समझ की बात है, माना तुम्हारे अध्यात्म ने तुम्हें यहां तक भी नहीं पहुंचाया है कि तुम परमात्मा के बन सको। इतने लोएस्ट लेवल में हो अभी भी तुम, इतने लोएस्ट। इससे बड़ा क्या मौका हो सकता है कि परमात्मा के बने। 63 जन्म और सतयुग त्रेता के पकड़े तो 84 जन्म संसार के बने, समाधान नहीं हुआ। माता पिता पति पत्नी बच्चों के बने, समाधान नहीं हुआ। समझ, इसलिए यहाँ का कायदा है बाबा मिलन मना समर्पण। बहुत बच्चे पूछते हैं बाबा मिलन कब है, कब आ सकते हैं। बच्चे जानकारी लो, बाबा मिलन में आना मना दोबारा यहाँ से ना जाना, ऐसी बात है। मधुबन में भी यही कायदा लगेगा। मैं भी तो देखूं कौन आना चाहता है बाबा मिलन के लिए, जबकि मैं 24 घंटा बैठा हूँ, बाबा चाहिए ना। हाँ, अब तक मैं आता जाता था, बात निराली थी, जब मैं आया तब तू आया, अभी मैं सदा का हूँ, अभी तू सदा का रह के दिखा, तुझ में दम है तो देखो तो सही। मधुबन में भी ऐसे होगा, जो सदा के लिए रहने के लिए राजी है उसी को बाबा मिलन में अलाउ किया जाएगा, जो समर्पित होने के लिए राजी है। बाकियों को क्यों करे, नहीं चाहिए। देखते हैं ना कितने क्वालिटी वाले निकलते हैं। तैयारी करके रखना बच्चे, ये नहीं समझना डायमंड हॉल में बैठूंगा तो मैं ऐसे अलाव करूंगा। समर्पण मना समर्पण, बिना समर्पित हुए बाबा मिलन होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कोई तिथि तारीख है तुम्हारी संसार को छोड़ने की, संसार से छूटने की और परमात्मा को पाने की, है कोई तिथि तारीख? बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो क्या, तुम्हारा संसार सतयुग में भी लेके जाने की आशा है। वो भी चाहोगे कि अगर ये मेरा घर गाड़ी बंगला सतयुग में भी जाए तो भी मुझे चलेगा, इस देह सहित महाकाल चटनी ना बना दे तुम्हारी और तुम्हारे संसार की यहाँ पर पूरी पूरी। समझ की बात है। और देखो बच्चे, ईश्वर का बनना सबके बस की बात नहीं होती, सबका भाग्य नहीं होता। ईश्वर का बनना ये भाग्य सबका नहीं होता, कभी नहीं होता, पता है तुम्हें। अभी राज बताओ तो बनने के लिए राजी हो जाओगे। जो समर्पित होते हैं ना, बाप के बनते हैं ना, वो कभी राजा और साहूकार पद से नीचे नहीं आते, कभी नहीं। पूरे 83 जन्म, पूरे के पूरे 83 जन्म राजा और साहूकार पद से नीचे आ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, किसी भी जन्म में नहीं आ सकते। राजा नहीं तो साहूकार, साहूकार नहीं तो राजा, यही उनका पद है 83 जन्म। प्रजा कभी बनते ही नहीं, साहूकार से नीचे कभी आते ही नहीं। मेरे बने हैं और प्रजा बनेंगे, इम्पॉसिबल है। एक जन्म भी प्रजा नहीं बन सकते, मेरी शान के खिलाफ है वो कि मेरा बच्चा प्रजा बने, इम्पॉसिबल है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। हर जन्म में अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में साहूकार या राजा, भले छोटा राजा या बड़ा राजा, पर राजा ही बनेगा। छोटा साहूकार या बड़ा साहूकार, पर साहूकार ही बनेगा। अभी मन हो रहा होगा, समर्पित हो जाए। नीच है ना मन, स्वार्थ दिखता है तब राजी हो। और बच्चे ध्यान में रखना, जो समर्पित होते हैं ना, उन्हें मैं भक्ति मार्ग में किसी न किसी रूप से जरूर मिलता हूँ, जरूर। मेरी कृपा अखंड रहती है। मेरे बने, एक जन्म के लिए मेरे बने ना, 83 जन्म मैं तुम्हारा बनूंगा, मेरे वचन है। तन मन धन सहित मेरे बने ना, अभी तन मन धन सहित मैं 83 जन्म तुम्हारी सेवा करूंगा, मेरे वचन है। अभी माया उठ रही होगी कि हम कोशिश करते हैं, घर में बात करते समर्पण की, ये स्वार्थ नीच बुद्धि, इनको स्वार्थ दिखाओ, आएंगे दौड़कर, दिल से नहीं करेंगे। बाप क्या कह रहा है और ये क्या कर रहे हैं, समझ की बात है बच्चे। बाप का बनने में जो प्रॉफिट है उसको तुम कभी समझ भी नहीं सकते। बाप का बनने में अरे प्रॉफिट मिले ना मिले, पर जिसके उसके तो बने। बूंद महासागर से निकली और महासागर तक पहुंची, इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। भले उस बूंद ने किसी को पानी नहीं पिलाया, किसी की प्यास नहीं बुझाई, किसी को शीतलता नहीं दी, पर जिसकी है उस तक तो पहुंची। समझ है बच्चे, और हर आत्मा का भाग्य नहीं होता, हर बूंद का भाग्य नहीं होता महासागर में वापस जाए। मुश्किल कोई बूंद जाती है महासागर में, ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। दिखते वक्त दिखेगी नदी बह रही, उस पर नहीं जाना। नदी बह रही, मुश्किल कोई बूंदे पहुंचती है महासागर तक। बच्चे तुम कौन सी बूंद हो चेक करो, महासागर तक पहुंचने वाली या बीच में कोई गायब करे ऐसी, खा जाए पी जाए ऐसी। चिंतन करो, समझ के बातें, पूरा पूरा चिंतन करो बच्चे। मोती बनने वाले हो या मिट्टी में मिल जाने वाले हो, बाप का बनना मना मोती बनना। कब बनोगे? और मैं सभी बच्चों को पूछना चाहता हूँ, जितने भी सुन रहे ज्ञान, गारंटी है बनोगे बाप के? गारंटी है क्या कि इस एक जन्म में तन मन धन सहित समर्पित हो जाओगे? गारंटी है? श्योरिटी है? अश्योरेंस है? निश्चय है? अभी कहोगे हाँ हाँ जी, बाप पूछेगा कब तक? अब कहोगे पता नहीं। यही तो बात है बच्चे, तुम्हें पता नहीं और तुम गारंटी दे रहे हो, अजीब बात है, क्या मूर्खता है ना। पता नहीं है और गारंटी दे रहे हैं। समझ है बच्चे, इसलिए बच्चे ध्यान देना इस बात पर, पूरा पूरा चिंतन करना अपने से। कब बनोगे बाप के, कैसे बनोगे, कोई उपाय है इतनी जिद मन में कि बाप के बन सको, है इतनी लगन कि बाप के बन सको। मुश्किल है बच्चे, मुश्किल है, चिंतन करना अपने से, मुश्किल कोई निकलेंगे जो बाप के बनेंगे। सभी का भाग्य नहीं है बाप का बनने के लिए। जो तुम अपने आप के हो, जो तुम परिवार के हो, समाज के हो, जो तुम तुम्हारी धारणाओं के हो, जो तुम तुम्हारी बिलीफ सिस्टम के हो, उन सबको छोड़ना पड़ता है। स्वयं को भी त्यागना पड़ता है बाप का बनने के लिए, तब बनोगे। चिंतन करना। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, कौन से बच्चे मददगार? सभी नहीं, सभी बच्चों की पूजा नहीं होती। जो मददगार बनते हैं उन्हीं की पूजा होती है बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को। जो मददगार बनते हैं, पता है बच्चे तुम्हें, हर स्थान का एक स्थान देवता होता है, हर ग्राम का एक ग्राम देवता होता है, हर कुल का एक कुल देवता होता है। ये सब कौन है मेरे बच्चे, बाप के बच्चे, जो संगम पर पूरे स्वाहा हुए, उनको मैंने उस स्थान का स्थान देवता का पद दे दिया, उनकी पूजा चलती है। उस गांव के ग्राम देवता का पद दे दिया, उनकी पूजा हो रही है। कुल देवता का पद दे दिया, समझ है बच्चे, ये सभी नहीं बन सकते, बहुत थोड़े बनते। और फिर कोई नहीं बनता मना किसी एक गांव से, तो जो बच्चे समर्पित हुए उनमें से मैं किसी बच्चे को किसी गांव का बना देता हूँ देवता प्रमुख, उसकी कलयुग अंत तक पूजा चलती है। बाप के ही बच्चे सभी, एक परमात्मा के बच्चे हैं सभी, जिन्होंने संगम पर इतना बड़ा पार्ट बजाया है, पूरे स्वाहा हुए हैं। ब्रह्मा पूरा स्वाहा हुआ, पूरे दुनिया भर में उसकी पूजा होती है, द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक। तुम्हारा क्या, तुम कितने स्वाहा हुए हो, पूरे हुए हो, तुम्हारी कितनी पूजा होगी? एक कम से कम घर में तो होगी क्या, गारंटी है? एक गली में तो होगी क्या, नुक्कड़ में? एक गांव में होगी क्या तुम्हारी पूजा, गारंटी है ऐसे बने हो? समझ है बच्चे, बाप के बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो, ये ज्ञानी योगी नहीं है, ये समर्पित बच्चे हैं। ध्यान में रखना बच्चे इस बात, समर्पित बच्चों की ही पूजा होती है, ज्ञानी योगियों की क्या पूजा करें? ज्ञानी योगी तो रावण भी था, रावण ने कभी समर्पण नहीं किया, न शिव जी को न श्री राम जी को। पूजा हो रही है? नहीं। प्रमाण है सीधा, ज्ञानी योगी की पूजा नहीं होती। कुबेर से भी बढ़कर धन था उनके पास, कहते किन्हीं शास्त्रों में, किन्हीं कथाओं में कि कुबेर पानी भरते थे उनके घर में, जब 33 करोड़ देवताओं को बंदी खाने में रखा था। धनवान की पूजा नहीं होती, न ज्ञानी योगी की होती है। धारणाएं रावण की सबसे ऊंची थी। धारणाओं को क्या पूछोगे तुम? कभी पूजा मिस नहीं की रावण ने, कहते हैं। समझ की बात है, समझ की बात है। और तुम सेवा की बात कर रहे हो। एक अपराध जो सीता मैया को उसने चुराया, वो छोड़ के उसने क्या गलत किया बताओ? क्या गलत किया है बताओ? हाँ, सबसे बड़ा अपराध है, पर मैं सेवा की बात पूछ रहा हूं। क्या अपराध है कोई तुम्हारा? क्या? इसलिए बच्चे, समर्पित की पूजा होती है। नंदी को कहते हैं ज्ञानी योगी धारणायुक्त सेवाधारी, नहीं ना, वही समर्पित, वही पूजा। देखने में क्या है नंदी? क्या है? बैल ही है ना, पर पूजा हो रही है। समझ है बच्चे, समर्पण का महत्व अलग है, ध्यान में रखना बच्चे। किसी फूल को सुगंध ना भी हो, लेकिन अगर मंदिर का फूल है ना, तो श्रेष्ठ है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फूल है। और कोई फूल कितना भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी सुगंध हो उसकी, मनमोहक, ऐसी सुगंध तुम सूंघते ही तुम्हें ट्रांस में लेके जाए, फिर भी उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि समर्पित फूल नहीं है, मंदिर का फूल नहीं है। सूंघेंगे, यूज करेंगे, सुगंध खत्म हुई, फेंक देंगे। पर मंदिर का फूल जन्म भर संभाल के रखेंगे, क्योंकि समर्पित फूल है। समझ की बात है, समर्पण ही सब कुछ है बच्चे, समर्पण में ही सच्चा सुख है। ध्यान में रखना इस बात को। बाकी बच्चे ज्ञानी योगी धारणायुक्त सेवाधारी बनने की चेष्टा करते हैं, और समर्पण की बात करो तो कहते ये नहीं होगा। तो मैं भी कहता हूं उससे भी नहीं होगा, बात खत्म, बात समाप्त। जो तुम्हारा उत्तर वही मेरा उत्तर। समर्पण के लिए हाँ जी है तो मेरा भी हाँ जी है, वर्षे के लिए, वरना ना जी है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम कहोगे हमें वर्षा नहीं चाहिए, बाप तो चाहिए। मेरे दिल में वही बैठ सकते जो समर्पित है, बाकी नहीं बैठ सकते। माया कभी भी चुरा के लेके जा सकती है तुम्हें। मेरे नैनों के नूर वही है जो समर्पित बच्चे हैं। समझ है, मेरे सर आंखों पर वही बैठे हैं जो समर्पित हैं। बाकियों को बिठा कर क्या करूं मैं? बोझ हो जाएगा, मुझे भी झंझट होगी। बच्चे चिंतन करो, ईश्वर का कहां तक बने हूं, चिंतन करो। समझ की बातें बच्चे, एक ही जन्म है और एक ही चांस होता है उसका बनने का। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने हिसाब से उसका बनोगे? पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। वो जब कहेगा तब बने तो बने, तुम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। समर्पण भी उसकी मर्जी से होता है, ध्यान में रखना। तुम अपने मर्जी से समर्पण नहीं कर सकते, कभी नहीं, हो भी नहीं सकता, और करो तो भी वो स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं। इसलिए नसीब से, भाग्य से कभी वो कहता है किसी को समर्पण, और वो कहता है थोड़ा चिंतन करते हैं। समाप्त, आउट, इसको कैंसिल करो, सोच भी नहीं सकते बिल्कुल। तुमने उसे समझ के क्या रखा है? जब चाहे जैसे चाहे तुम चलो, समझ के क्या रखा है? संभल कर रहना बच्चे। इसलिए बाप को पहले ध्यान से समझना। बहुत बच्चे आते हैं, कहते हैं हाँ बाबा बैठा है बच्चे रूप में, कुछ भी बात करो, हर बात का हिसाब हो रहा है ऊपर, तुम कुछ भी बात नहीं कर सकते मुझसे। ध्यान में रखना। और तुमने इस संगम पर जितनी बातें की है ना, संभल कर रहना। क्यों? अगर तुम्हारी बातें ज्यादा रही तो किन्हीं जन्मों में वाणी छीन ली जाएगी, गूंगे पैदा होंगे, भल राजा बनो पर गूंगे बनोगे, भल साहूकार बनो पर गूंगे। इसलिए बाप को पूछा नहीं जाता, बाप से सिर्फ सुना जाता है। बाप को जो सुनाते हैं ना, वो गूंगे और बहरे दोनों बनते हैं। बाप को सुनाया ना, अभी बहरा बनोगे। बाप ने सुना ना, मुख से बोला ना, गूंगा भी बनोगे। इसलिए कभी सवाल नहीं पूछना है। कितना भी कड़ा सवाल मन में आए, मैं सीधी बात कहता हूं, मरो पर सवाल ना पूछो। कुछ भी सवाल हो तुम्हारा, ऐसा सवाल जो अगर तुमने उत्तर नहीं पाया तो शायद तुम दुर्गति को पाओगे, तो भी नहीं पूछना। दुर्गति को पाना पर सवाल नहीं पूछना, दुर्गति को पाना पर सवाल नहीं पूछना। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। कभी नहीं पूछना बाप को सवाल, वरना तुम्हें लगेगा इस जवाब से तुम सदगति पाओगे। पाली दुर्गति, सदगति समाप्त हुई। संभल कर रहना। नेवर आस्क एनी क्वेश्चन, नेवर मीन्स नेवर। संभल कर रहना, बड़े ध्यान से चलना। वो कोई नौकर नहीं किसी का जवाब देने के लिए, वो कोई गुलाम नहीं है तुम्हारा कि तुम्हारे प्रश्न को स्पष्ट करे उत्तर के रूप में। ध्यान में रखना, वो मालिक है, उसकी मर्जी चलती है। ध्यान में रखना। इसलिए कभी कुछ पूछना नहीं, कभी कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं करना है। अगर तुम श्रीमत पर नहीं चल सकते ना, तो क्लैरिफिकेशन भी नहीं करना है। इसका भयंकर बोझ है, दिखाऊंगा मैं अंत में। क्लैरिफिकेशन करने वालों पर क्या चढ़ा है, एक्सप्लेनेशन लेने वालों पर क्या चढ़ा है, डिस्कशन करने वालों पर क्या चढ़ा है, अंत में दिखाऊंगा। अभी नहीं, थोड़ा और मरने दो उन्हें, थोड़ा और गिरने दो, अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। उत्तर चाहिए ना तुम्हें, अंत में मिलते हैं। उत्तर को लेकर तुम्हारी जान भी निकल जाए कि इसका उत्तर चाहिए, उत्तर चाहिए, फिर भी सवाल नहीं पूछना। ध्यान में रखना। तुम्हारा एक सवाल तुम्हें एक कल्प के लिए नरक में डाल सकता है। भल सवाल अच्छा होगा, जवाब भी राइट होगा, पर यू डोंट हैव दैट राइट टू आस्क क्वेश्चन। आपके पास कोई अधिकार नहीं है, ना आत्मा का सवाल पूछ सकते हो, ना परमात्मा, ना ड्रामा, ना राजयोग, कुछ भी नहीं। जब वो जो सुनाए चुपचाप सुनना है, वरना निकल जाना है। ध्यान में रखना, मुख खोला कि मरे, ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, संभल कर रहना। तो कौन से बच्चे पूजे जाते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं? तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। गीत है माताओ माता, ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की ही गाई जाती है, सभी का सदगति दाता एक है, याद भी उस एक को करना पड़ता है। यह तो तुम बच्चों की महिमा है, तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना है। भारत पर ही कहानी है, इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो। उनके साथ तुम्हारा योग है, तुम जानते हो उनकी यह सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। यह चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तुम कहेंगे शिव बाबा ने। किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है, वास्को दी गामा ने सारी धरती का चक्र लगाया। पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। यह सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। बाप फिर सब बातें नटशेल में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत में 5000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था, भारत में भी कितने थोड़े होंगे। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी। ऐसा गाया जाता है, दिल्ली को ही परिस्थान कहते हैं। पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में जहाँ राज्य करते हैं वहाँ होता है। भारत का बहुत प्रभाव है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए, धारण करना होता है। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है, गाया जाता है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं भी इसमें प्रवेश करता हूँ, तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है, परंतु समझते हैं भ्रकुटी के बीच में वह छोटा सा स्टार है ना, तो कहेंगे मस्तक मणि, मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता है। कहते हैं सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। यह सब बातें वास्तव में इस समय की है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है, वह भ्रकुटी के बीच में रहती है। बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। मुख्य बात समझनी है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाप कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता जरूर हूँ, निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे यह ज्ञान नहीं था, जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही फैमिली में है, लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं, शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी है। ऐसे नहीं श्री कृष्ण के वा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं तो सिद्ध होता है एक बाप के यह सब बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं, बाप ने यह यज्ञ रचा है जीव आत्माओं द्वारा। जैसे बाप की पूजा होती है वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी पूजा होती है, वही नाम चला आता है। यहाँ तुम आत्माएं सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनसे बहुत भारी सर्विस करता हूँ, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उन्हों की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। सबकी पूजा करते हैं, कम से कम लाख शालिग्राम बनाते हैं। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई लाख शालिग्राम भी बनवाते हैं। यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं इस पतित शरीर द्वारा सेवा कर रही हो। सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाप के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, न रुद्र को न शालिग्राम को जानते हैं, जिन्होंने राज्य पाया। अभी तुम राज्य पा रहे हो। पूजा मुख्य की होती है, वह है लक्ष्मी नारायण, जिनकी डिनास्टी गायी हुई है। उन्होंने यह भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा ना। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। बड़ी मीठी बातें हैं, नटशेल में बाबा समझाते रहते हैं ताकि धारण भी कर सको। मुख्य धारणा की बात है। मुझ बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है, जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं सो अब समझते हो। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी हैं, फिर पूज्य होंगे, वह फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा। उन्हों को भगवती भगवान जरूर भगवान ने ही बनाया होगा। अब भगवान निराकार है या साकार? साकार में ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण है, उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार, इसलिए निराकार की पूजा होती है। यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। पहले पहले बाप में निश्चय रखना है, बरोबर हम आत्माओं का बाप वह है। कोई कहे हे भगवान हे परमपिता, तो बोलो यह किसने याद किया और किसको? एकदम पकड़ना चाहिए, तुमको कितने बाप हैं, तुम किसको पुकारते हो, भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर, तो ज़रूर दो फादर हैं। आत्मा याद करती है गॉड फादर को। तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक बाप है, आत्मा का बाप कौन? जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। यह किसने और किसको पुकारा? उस बेहद के बाप का परिचय देना है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह भी उनको याद करते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए हैं। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले याद जरूर एक को ही करते हैं, वह है सभी आत्माओं का बाप। वर्षा बाप से ही मिलता है, तुम आत्मा उनको पुकारती हो। दो बाप का परिचय देना है, हद का बाप और बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं आता हूँ, आकर तुमको शांति सुख देता हूँ, फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तो उज्ज पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं, बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते हैं। फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में वह भी सब तमोप्रधान बन जाते हैं। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वह खाली होगा, तब तो वापिस जाएंगे। तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन, तो ज़रूर पतित है ना? बच्चे जब थक जाते हो संसार से, जाओ परमधाम में, अपनी जगह में स्थित हो जाओ, शांति से बैठो निराकार रूप में, अच्छा लगेगा। भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आते ज़रूर है, परंतु कब आया कैसे आया वह भूल गए हैं। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ? यह तो निराकार बाप कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूँ। तो वह अलग हो गया। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो। यह तो कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान पतित पावन ज्ञान सागर कह नहीं सकते, भल गीता हाथ में उठाते हैं फिर भी कहते हैं पतित पावन सब सीताओं का राम, राधे का कृष्ण नहीं कहते, राम अर्थात परम पिता परमात्मा, त्रेता का राम कहे तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते। परंतु नहीं है बात परमात्मा की, हेवनली गॉड फादर निराकार को ही कहेंगे, लिबरेटर गाइड बाप को ही कहते हैं। क्राइस्ट थोड़े ही सबको लिबरेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते हैं, बाप ही आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही फिर गाइड बनते हैं, कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, तुमको बाप ने आकर अपना बनाया है, तुम्हारा यह है ईश्वरीय जन्म, तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है, तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल, वह बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी कर देती है, तुमको तो वह एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना, यह सब चीज़ें फिर तुमको काम में आएंगी। विलायत में बत्तियाँ ऐसी है जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी, सतयुग में भी ऐसे रोशनी रहती है। वैभव जो अभी यहाँ है वह तुमको वहाँ भी रहते हैं, तुमने साक्षात्कार किया हुआ है, वहाँ तो एक्सीडेंट आदि की बात नहीं रहती है, दुख की बात नहीं होती। बाप आकर तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी करते हैं। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, उनसे पूछना है तुमको अशांत किसने किया है, यह तुम जानते हो। अशांत यह पांच विकार ही करते हैं, परंतु यह समझते नहीं, यह भूल गए हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, हे आत्मा तुम आई हो शांति देश से, फिर यह ऑर्गन्स लिए हैं, अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ, इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात नहीं। कहाँ तक गुफा में बैठेंगे, आत्मा कहती है मैं इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ, अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाप कहते हैं तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो, तुम असल वहाँ के रहने वाले हो, अपने घर को याद करो, कर्म तो करना ही है, कर्म बिना रह नहीं सकते। वह समझते हैं हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है, परंतु कर्म का सन्यास तो हो नहीं सकता, उनका तो धर्म ही ऐसा है, गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना है, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है, भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित हैं। बाप बैठ यह राज समझाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है, सतो रजो तमो से पास होकर अभी सबको वापिस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, स्वयं को इस शरीर में भ्रकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दो नंबर, अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान है हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है ऐसे अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। स्लोगन है, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बन सकते हो तो पूर्णता बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति।
वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाहरे में आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाग्य वाह, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।